नारायण 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 नारायण। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सब प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या केंद्र में अपने अपने गुरु को हृदयस्थ करके यहां पे गुरु पूजन के लिए उपस्थित हैं। हमारे प्रेमपुरी के ट्रस्टीगण आज उपस्थित नहीं हैं, गिरीश भाई तो ललित भाई और हमारे शौर्यवाला जी से हम अनुरोध करते हैं कि वो माल्यार्पण करें। उनको कष्ट नहीं, बार बार उठना बैठना पड़ेगा, तकलीफ होगी आप लोग। और इस बीच मैं मंच परिचय दे दूं, हमारी परम पूजनीय स्वामिनी विभवानंद जी सूरत से पधारी है, बम्बई से पधारी है, उनका मैं स्वागत करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। स्वामी जी की हमारे पूज्य परम पूज्य स्वामी श्री प्रत्येक बोधानंद जी महाराज की छोटी बहन है स्वामिनी विभवानंद जी, वो हमारे बीच में है। ओजस्वी वक्ता है और बहुत प्रेम से किसी विषय को उठा के समझा सकती है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रह्मचारी सूर्य नारायण जी है, ये भी स्वामी जी की सेवा में है, साथ में है, सन्निधि में है, बहुत प्रेमी है। हमारे वृंदावन से प्रीतमानंद जी पधारे हैं, वृंदावन का रस उनके कंठ में विराजमान है, हृदय में भक्ति विराजमान है, वो गंगा जमुना सरस्वती की संगम है। यहां पे हमारे बीच में उपस्थित हैं वृंदावन का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे परम पूज्य स्वामी जी, कहा मैं क्या कहूं, वो तो है ही हमारे। आज जिनका सत्कार करना है हमको पंडित जी, वो भी पधार चुके हैं यहां पे, उनका सत्कार हम लोग बाद में करेंगे अध्यक्षीय प्रवचन के पहले। हमारे श्री गौतम भाई शास्त्री जी संस्कृताचार्य, आज आपका सत्कार होना है, आपका भी इस सभा में स्वागत है। और हमारी इस सभा की अध्यक्षता परम पूज्य स्वामी श्री प्रत्येक उमेशानंद जी महाराज कर रहे हैं, मैं उनके चरण में प्रणाम करता हूं और उनसे अनुमति लेके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं। आप सभी भूदेवों का इस सभा में स्वागत है, सभी भक्तजनों का स्वागत है। पूज्य आचार्य विश्वनाथ जी शास्त्री से हम प्रार्थना करते हैं कि वो मंगलाचरण स्वरूप वेद पाठ और अपना वक्तव्य
हरिओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्याः अध्यक्ष महाभागाः स्वामिनः उमेशानंद जी, परम पूज्याः प्रत्येक बोधानंद जी महाभागाः, परम पूज्याः प्रीतमानंद जी महाभागाः, परम पूज्याः सूर्यनारायण जी महाभागाः, स्वामिनी विभवानंद जी एवं सोमदेव जी, सत्कार मूर्ति गौतम शास्त्री, प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट ट्रस्टीगण, विद्वत जन, भक्तजन, आज गुरु पूर्णिमा है वो पहले मंगलाचरण में ही बता दिया सोमदेव जी ने। थोड़ा मैं यही बताऊंगा, गुरु की महिमा तो हमारे संतों के मुख से ही उत्तम रहेगी, मैं तो इसका रूप बता देता हूं कि महाराज जी ने गुरु पूर्णिमा का ये जो रूप था कहां से शुरू हुआ और चल रहा है। तो महाराज जी की भी इच्छा ये थी कि मुंबई में, खासतौर पे मुंबई में, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद के जो हमारे विद्वत जन हैं उनका आज के दिन विशेष रूप में सत्कार हो, इसलिए महाराज जी ने ये कार्यक्रम पहले भारतीय विद्यावन में शुरू किया था। भारतीय विद्यावन में बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम होता रहता था। बाद में हमारे प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टी ने ये महाराज जी से निवेदन किया कि ये कार्यक्रम क्यों न प्रेमपुरी में आश्रम में किया जाए, तो बाद में दो सत्र के रूप में, मतलब ये सायंकाल को ब्राह्मणों का सत्कार वगैरह होता था और वेदों का पाठ वगैरह, तो थोड़े समय, अभी लगभग गिनती तो नहीं बता सकता लेकिन 8-10 साल हुए हमारे आश्रम से ही, मतलब वृंदावन आश्रम से ही, सोमदेव जी भी बताए कि हम क्यों ना उसको थोड़ा अलग रूप रखें। तो अलग रूप में यही बताया गया कि ब्राह्मणों का तो सत्कार होता है लेकिन एक विशिष्ट सत्कार, एक कोई भी समझो ऋग्वेदी हो यजुर्वेदी हो और उसका विशिष्ट सत्कार हो, तो विशिष्ट सत्कार के रूप में हमारे गौतम भाई शास्त्री जो महाराज जी के संस्मरण भी, मतलब हम हमारे से सीनियर हैं, हम महाराज जी के हाथ से कुछ प्राप्त किए हैं लेकिन उस वक्त हम हमको नहीं था, ध्यान में नहीं था, भारतीय विद्यालय में मैं खुद मध्यमा में पढ़ रहा था और बाद में महाराज जी को कुछ समय के लिए मैंने भी दर्शन किए हैं यहां पे, वही गौतम भाई शास्त्री आज के सत्कार मूर्ति हैं। और रही बात वेदों के अध्ययन की, तो वेदों के अध्ययन के बारे में भी संत वृंद ही बताएंगे गुरु पूर्णिमा के निमित्त, बस मैं गुरु पूर्णिमा के निमित्त यही बताऊं मेरे विचार कि वह व्यक्ति जो अपने जीवन को संवारे वही गुरु के उसमें आता है। जैसे तो श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में 24 गुरुओं की का वर्णन पंचमहाभूत से शुरू किया गया है, लेकिन जीवन को जो संवारे और खास तौर पे आध्यात्मिक जीवन में जो लाए, उस व्यक्ति के चरण में बैठ के एक विशिष्ट प्रकार की पूजा का दिन है गुरु पूर्णिमा। इतना कहकर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और कुछ हमारे विद्वान जन जो आगे बैठे हैं ऋग्वेद का पाठ करेंगे, बीच बीच में पाठ रहेगा, प्रवचन रहेगा उसी तरह से, तो ऋग्वेद के या चारों मंत्र आप सुनाइए।
श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। देवदेवोत्तमदेवते सार्वभौमा अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायका ऋषिगणवंद्या सच्चिदानंदात्मन ऋग्वेद प्रिया ऋग्वेद सेवा ममधारया ओम। कद्रुद्राय प्रचेतशे मीलुष्ठमायतव्यसे वोचे मसंतमं हृदे यता नो अदितिः करत् पश्येन्द्रभ्यो यथा गवे यता तोकाय रुद्रियम् यथा नो विश्वे अदितिः करत् पश्येन्द्रभ्यो यथा गवे। ॐ यजुर्वेदः ॐ देवदेवोत्तमदेवते सार्वभौमा अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायका ऋषिगणवंद्या सच्चिदानंदात्मन यजुर्वेद प्रिया यजुर्वेद सेवामवधारया हरिः ओम। ईके ओ हरिः ओम। ईशावासियामेतग्ं सर्वाञ्जगदियाञ्चाजागतियाञ्जागाता तेन त्यक्तेना भुञ्जीथामागरिधाः तस्य सिद्धानां। हरिः ॐ ॐ देवदेवोत्तमदेवते सार्वभौमा अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायका ऋषिगणवन्द्या सच्चिदानन्दात्मन् सामवेद प्रिया सामशिवमवधारया ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। ॐग्नायि आयाय वोय तोयाय तोयाय गणानाः वो तोयाय नाय देवते सार्वभौमा अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायका ऋषिगणवंद्या सच्चिदानंदात्मन् अथर्ववेद प्रिया अथर्ववेद सेवामवधारया ओम अश्विन सुभसावो धादयन्त्विन पूजा वरुणो मित्रो अग्निः इममा नित्या उत विश्वे च देवा उत्तारस्मिन् ज्योतिषि धारयन्तु अद्य देवा प्रदिज्योतिरस्तु सूर्यो अग्निरुतवाहिरण्यम् सपत्ना समदधारे भवन्तोत्तमन्नाकमधिरोहयेमम् स जातानां दुष्टमेन ब्रह्माणादवेदः तेन त्वमग्न इह वर्धयेमं स जातानां दृदादेह्येनम् येषाम् यज्ञमुदवर्चोदनेहम् दायस्पोषमुत चित्तान्यग्ने सपत्नादमदधारे भवन्तोत्तमन्नाकमधिरोहयेमम् यदस्मृतिरग्रिमकिञ्चिदग्न उपनिमदने जातवेदः ततः पाहि त्वम् न प्रचेदत्सुभेदकेभ्यो अमृतत्वमस्तु नः पश्येमधरदक्षतम् जीवेमधरदक्षतम् बुद्ध्येमधरदक्षतम् रोहेमधरदक्षतम् पूजेमधरदक्षतम् भवेमधरदक्षतम् भूयेमधरदक्षतम् भूयाशेमधरदक्षतात् स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पामानि द्विजानाम् आयुप्राणम् प्रजाम् वसुम् कीर्तिम् द्रविणम् ब्रह्मवर्चसम् मह्यम् दत्त्वा व्राजत ब्रह्मलोकम्
नारायण। ये हम श्रुतियों का श्रवण कर रहे हैं और ये सुनना कैसे जीवन में प्रभावकारी होता है और गुरु का मिलना कैसे अमोघ हो जाता है, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे बीच में त्रिमपुरी अध्यात्म विद्या केंद्र के ट्रस्टी मधुसूदन जी तिजोरी वाला उपस्थित हैं। वो गुरुचरणों में अपनी वाक् पुष्पांजलि रखेंगे और वो सुनाते हैं कि कैसे उनके गुरु की वाणी उनके कानों में पड़ी और उनका जीवन बदल गया। तो गुरु महिमा क्या होती है और गुरु के प्रति की श्रद्धा क्या होती है, उसका एक जीवंत उदाहरण हमारे बीच में मधुसूदन भाई त्रिजुरुवाला के रूप में है। उनसे अनुरोध है कि वो वाक् पुष्पांजलि गुरुचरणों में रखें।
स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, सभी संतों के चरणों में प्रणाम। महाराज जी के गए शरीर छोड़े 27 साल हो गया, फिर भी हमें ऐसा नहीं मालूम हुआ है कि महाराज जी यहां हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। महाराज जी की कृपा मुंबई पर बड़ी रही थी, 6 महीना करीब करीब महाराज जी यहां मुंबई में रहते थे और सभी उत्सव है, आनंद उत्सव, संन्यास जयंती वगैरह, दिवाली, सब उत्सव यहां हमारे महाराज जी से होता था। अभी महाराज जी थोड़े समय पहले महाराज जी का जहां 75 साल पूरा हुआ अमृत महोत्सव हुआ था वृंदावन में, तभी जैसे अभी यहां संत महात्मा 5-7-10 है ऐसा वहां 50 आदमी स्टेज पर बैठ के महाराज जी का प्रवचन सुनते थे। पहले महाराज जी सब संतों को बोलते थे बुलाने के प्रवचन करने के लिए, आखिरी 15 मिनट के लिए जो महाराज जी बोलते थे सभी का मन खुश हो जाता था। स्वामी जी महाराज अगर भागवत की बात करें तो ऐसा लगे कि ऐसा कोई भागवत है ही नहीं भक्त, और अगर ज्ञान की बात करें तो ऐसा लगे ऐसा ज्ञान ही कोई हो ही सकता है नहीं, ऐसा महाराज जी का प्रभाव था। और यहां तो हमको तो निहाल ही कर दिया, और महाराज जी का भागवत का प्रवचन एक हफ्ता का, दो हफ्ते का, तीन हफ्ते का, दो महीने का, ऐसा हमने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसा संत महात्मा मैं महाराज जी जहां रहते थे वहां से मैं यहां प्रसंग यहां उसको लेके लेने के लिए जाता था गाड़ी में, तो महाराज जी को मैंने एक दफे बताया कि महाराज जी आप तो उपनिषद का प्रवचन करते हैं तो हमको तो रसोवई सह उसमें रसानुभूति होने लगी है। तो महाराज जी ने बताया कि उसका महाराज जी का प्रश्न का जवाब देखिए तुम्हारी रुचि बढ़ गई है महाराज जी का। ऐसा ये संत महात्मा हमारे बीच में थे, और हर साल आशीर्वाद तो महाराज जी को मिलता ही है। अभी आज भी गुरु पूर्णिमा अरे और अपना आनंद का जो महाराज जी ने आशीर्वाद भेजा है, महाराज जी का ही आशीर्वाद, सुख या दुख के रूप में प्रभु का ही विधान आता है, और उसका विधान अपने जनों के लिए कभी अमंगल रूप नहीं होता, अभी तो मंगल ही करता है। वह प्रारंभ में कटु भले के प्रतीत होता है किंतु परिणाम तो उसका मधुर ही होता है। ऐसा तो संत महात्मा ने कितना उदाहरण दिया है अपने को, एरोप्लेन में आदमी जाता है लेट हो गया बच गया, जो गया वो गया सब। और ऐसा भी था एक तो सब आप लोगों को सभी को भी मालूम होगा, राजा और प्रधान सब लोग साथ हॉल में बैठे थे अपना काम, तो कोई तलवार लेके आया तो तलवार देखने गया राजा तो उसमें उसका अंगूठी कट गया, और प्रधान बोल दिया जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, अरे मेरा अंगूठी कट गया और तुम बोलता है कि अच्छा हुआ, उसको जेल में भेज दिया। और महाराज जी कभी ठीक हुआ पीछे गया राजा, तो जब गया वहां तो उसकी उसको तो डाकू लोगों ने पकड़ लिया था, पीछे तो बस देखा कि उसका हाथ में अंगुली वो पूर्ण नहीं है तो बच गया। अब वहां अपने घर पे आया पैलेस में आया तब उसको हमारा प्रधान कहता था, वो तो बड़ी अच्छी बात थी, वो बताता था कि अगर जोग होता है वो अच्छा ही है, पर तुमको जेल में भेज दिया मैंने उसमें तुम्हारे क्या अच्छा हुआ। तो प्रधान ने बताया कि मैं तो पूर्ण था आपके साथ चलता था तो मेरा तो होम नमः शिवाय हो जाता था। ऐसा संत महात्मा के चरणों में हमें बैठने का बहुत ही अच्छा हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमें तो महाराज जी के कैसे सुनना, महाराज जी की वाणी तो सुनने को हमको मिलती है, बस यही हमारा सौभाग्य है। सभी के चरणों में प्रणाम।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाषिक कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। महर्षि ने जीवन में जिससे एक अक्षर भी लिया उनका स्मरण वो जीवन भर करते रहे। हम महाराज जी की आराधना उपासना के लिए यहां अपने अपने गुरुओं की उपासना के लिए बैठे हैं। आगे के क्रम में मैं ब्रह्मचारी श्री सूर्य नारायण जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमें अपनी बात वाणी सुनाएं। ब्रह्मचारी जी पाठ भी आपको वेद पाठ भी सुनाएंगे। आप लोग बोल सकते हैं, साथ में बोल सकते हैं।
ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गणानांत्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम पमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतो। ओम शांति शांति शांतिः। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियः अग्निं ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे स्वर्गेयाय शक्त्यै युञ्जते मन उत युञ्जते दियो विप्रा विप्रश्य बृहतो विपश्चितः विहोता सत्सिदधिरे वयुना विदेकयित्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मैं दक्षिण से हूं, मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आती है। स्वामी जी ने परम पूज्य प्रत्येक बोधन सरस्वती स्वामी जी ने मुझे बोला तुम्हें कुछ कहना है इस पुण्य दिन में। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत भाग्यवान हूं मैं आज यहां है आपको बीच में, और मुझे पास मेरे पास तो माइक है, इसलिए आप सबका ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू मैंने यहां बैठा है सभी गुरु लोगों को प्रणाम करके मेरा चरण स्पर्श उनका उन लोगों का चरण स्पर्श करके मेरा वंदन को बता रहा हूं यहां। और ऐसा है कि जब गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं, व्यक्ति को नहीं है, परंपरा है, गुरु परंपरा को हम स्वीकार करके उस परंपरा को हम मर्यादा देके परंपरा से आशीर्वाद देने के लिए सब कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या आत्मविद्या तो परंपरा बिना नहीं हो सकता है। तो तदीय जति तन नई जति ऐसा सब बहुत कुछ वेद में बताया है, वो सब गुरु के बिना हमको समझ में नहीं हो सकता है। और समझना तो अवश्य है, क्योंकि वो अपने का बात है, हमारा स्वरूप का बात है वो। इसलिए तो सबका आत्मविद्या सीखना है गुरु के द्वारा, और गुरु बिना नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इन सब गुरु यति वर्ग को प्रणाम करके मेरा गुरुजी इनका द्वारा मैं प्रणाम कर रहा हूं, और पूरा परंपरा का प्रणाम कर रहा हूं। जैसा मैं 12 साल विदेश में थे, और वहां तो मदर्स डे फादर्स डे सब मानते थे, और अभी इंडिया में भी भारत में भी ये सब शुरू हो गया मदर्स डे फादर्स डे। हमको तो सबसे मातृदेव हो भव पितृदेव हो भव आचार्य देव हो भव अतिथि देव हो भव, तो हम तो माँ बाप को तो हमेशा हम देवता रूप से तो प्रार्थना तो हो रहा है, मगर वो सब होने से भी गुरु का तो इतना महत्व एक स्थान दिया है। इसीलिए सिर्फ भारत में ऐसा एक दिवस मना रहा है कि गुरु पूर्णिमा जैसा। तो ये बहुत अनादि से मदर्स डे फादर्स डे आजकल शुरू हुआ, मगर गुरु पूर्णिमा से अनादि से हो रहा है। गुरु परंपरा अनादि है, गुरु अनादि है, दक्षिणामूर्ति का स्वरूप है गुरु, तो इसका मतलब भगवान है, और भगवान अनादि है, गुरु भी अनादि है। सबको मेरा प्रणाम। हरि ओम।
बहुत बहुत सुंदर भाव रखे। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु। तो ये जो देव है, तो देव की जो मात्रा है वो वहीं रहने दें, और उसके अक्षर आगे पीछे कर दें तो वो वेद हो जाता है। तो वेद और देव ये दोनों हमारे जीवन के लिए। मैं परम पूजनीय स्वामिनी विभवानंद जी से अनुरोध करता हूं, वो भी अपनी बात को पुष्पांजलि महाराज जी के चरणों में।
गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का आज का दिन, आज का जो पावन दिन है, वो समग्र गुरु जी को, परंपरा को अपनी तरफ मेरी ओर से अपनी तरफ से श्रद्धांजलि प्रदान करने का ये सबसे अच्छा अवसर है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम चतत्पुरस्पुत्रप्रशंसम व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास शिष्य पद्मपादम च अस्तामलकम च शिष्यम अस्मद् गुरुम प्रणामि। आज के दिन को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। आज के दिन व्यास जी ने, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया और इस वेदांत संप्रदाय का हमारे सामने प्रस्तुत किया, और भगवान शंकराचार्य महाराज ने इस परंपरा को पूर्ण रूप से प्रकाशित किया। वहां से लेकर जिनके पास से मैंने शिक्षा ग्रहण की, वो स्वामी महाराष्ट्र स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनको जिनके पास से मुझे ये विद्या प्राप्त हुई, वो यहां पर बॉम्बे में, यहां प्रेमपुरी आध्यात्मिक भवन में रोज आते थे, और हम लोग अंधेरे से मैं और स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी रोज यहां पर आते थे। क्या क्यों? तो उनके पास से शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं, हम तो उनके पास आते थे। उनकी जो वाणी थी, वो वाणी इतनी मधुर थी, और उनका जो प्रेम था, वो जो शास्त्र का शास्त्र के एक एक शब्द बोलते थे, तब तो हमें शुरुआत में कुछ पता ही नहीं चलता था। हम महाराज जी को कहते थे कि महाराज जी आप बोलते हैं, आप आपको सुनते हैं और उनको अच्छा लगता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आती है। तब हमारी उम्र कुछ 18-19 साल की उम्र थी, और रोज आते थे, बस महाराज जी को देखना, महाराज जी का उनका चरण स्पर्श करना, और उनका मुखारविंद जो स्मित था वो देखने के लिए हम आते थे। फिर महाराज जी ने जब ये कहा तो बोले कि महाराज जी बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उनका ये मतलब कब ठीक होगा, लेकिन हो जाएगा, चिंता मत करो, बस आप आओ बैठो और सुनो। और ऐसे करते करते हमने सोचा कि कैसे होगा, लेकिन ये देखो कि यही शब्द मैंने स्वामी दयानंद जी महाराज को भी कहा था कि स्वामी जी मैं आपके प्रवचन में आके बैठती हूं, तो जैसे आप बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मधुर लगता है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड आई फील लाइक आई वुड लाइक टू बी विद यू ऑल टाइम, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एवर यू आर अनफोल्डिंग द शास्त्र वर्ड्स। ही सेड डोंट वरी, एवरीथिंग विल हैपन, एवरीथिंग हैपन्स व्हाट, ये होगा सब। ये महाराज जी भी ये कहते थे, स्वामी दयानंद जी महाराज भी ये कह रहे थे, और इसके जो हैपन जो कह रहे थे वो सही रीत माने से, जब थोड़े साल तब उनके संग उनकी सानिध्य में जब बिताया, उनके साथ बैठे पढ़ते पढ़ते रहे, तब पता चला कि ये कब, ये जो शास्त्र के जो शब्द उन्होंने जो हमें जो सिखाया वो कब हमने ग्रहण किया, और कब ये प्रकट करने का समय भी उनके सामने आ गया था। तो ये उनकी कृपा थी हमारे पे, और असीम कृपा थी, क्योंकि हम जब भी जाते थे वृंदावन, तो जब भी वृंदावन जाते थे तो वृंदावन में आते थे इतनी अच्छी तरह से उनका स्वागत, आओ हमारे पहले का नाम बोल के बुलाते थे, आओ बेटा आ जाओ बैठो बैठो यहां पर, तो ऐसा लगता है कि यहां पर इतना अच्छा लग रहा है। और आज उनको याद करने के लिए हमारा मन जैसे उन्होंने कहा, दोनों ने कहा कि आज 28 साल हुए महाराष्ट्र गए, ऐसे हमको ऐसा लग ही नहीं रहा है, कि ऐसे भी लगता है आज भी महाराष्ट्र हमारे बीच में अभी भी है। और उनके साथ का जो उनके साथ, और उनकी मधुर वाणी में कैसा था कि आज हम बैठते थे और उनकी सादी सीधी तरल भाषा में वो बताते थे और हम सीखते थे, और हम उनके साथ बैठ जाते थे, और उन्होंने हमको ये सिखाया कि कैसे सादी सीधी रीत से जीवन में व्यतीत करना, साधु जीवन उन्हें हम उनके पास से हम सीखे, उनकी तरह उनको देख देख के हम उनसे बड़े हुए। और आज उनके साथ में उनके पास उन्होंने इसके बाद बोला कि तुम स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी अब तुम्हारा ध्यान रखेंगे, और स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी ने भी यही किया कि जैसे महाराष्ट्र हमको साथ में लेके चलते हैं, आज वो भी हमको साथ में लेके चल रहे हैं। आज के दिन मुझे तो मालूम था, स्वामी जी का सुबह फोन किया, उन्होंने भी किया, और ललित भाई ने फोन किया, आप आ जाइए, हम आ गए। इसका और कोई उत्तम दिन नहीं है कि महाराष्ट्र को आज याद करने का, कोई और उत्तम दिन नहीं हो सकता। और उनकी भाषा में कहिए तो कल्पात्री महाराज ने भी कहे थे, महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र को कहते वो तो चलती फिरती लाइब्रेरी है, और एक बड़ी चीज अच्छी महर्षि ने हमको बताई, अभी भी हमको याद है। महर्षि बताते थे कि पहले अपनी बुद्धि में बुद्धि को शास्त्र के अनुसार बनाओ, और उसके बाद जो भी बुद्धि से प्रकट होगा वो शास्त्र ही होगा। इसी बात से मैं अपने समग्र गुरु जी को प्रणाम करते मैं अपनी वाणी को।
अभी वेद पाठ कराएंगे हमारे आचार्य जी।
सभी एक साथ जागृत तो होकर लेंगे, क्योंकि चारों वेदों का पाठ हो गया है।
ब्राह्मणो
परम पूज्य स्वामी जी ने कहा, मैंने तो अपना मिला दिया था वाक् पुष्पांजलि की सहस्राक्ष सहस्रपाद सब लोग बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूं। तो महाराज ने कहा कि नहीं, महाराज जी के जीवन के बारे में, महाराज जी के जीवन में जो गुरु परंपरा थी उसके बारे में स्मरण करा दो। आप लोगों को सब मालूम है महाराज श्री का जन्म, हमारे पूज्य गुरुदेव का जन्म काशी के एक छोटे से गांव में महराई नामक स्थान में हुआ। महराई को अगर अलग अलग करें तो उसमें से हर और माई ये दोनों शब्द निकल आते हैं, मतलब मां अन्नपूर्णा और शंकर, शंकर पार्वती जहां रहते हों उस गांव का नाम महराई। महराई जैसे गहराई होता है तो गहराई नीचे ले जाने के लिए अर्थ में है, और महराई महत्ता देने के, यश देने के, यशोदा जिसका नाम हो उसका नाम महराई। तो ये दोनों परंपरा महाराज श्री की, शिव पार्वती ज्ञान परंपरा और भक्ति परंपरा, ये जन्मस्थान महाराज जी का। महाराज जी के बचपन के गुरु उनके पिताश्री और उनके बाबा चंद्रशेखर शास्त्री, पंडित चंद्रशेखर द्विवेदी ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान, और इतना अकाट्य ज्योतिष था कि पूरी काशी में ये श्रुति थी कि जो पंडित चंद्रशेखर द्विवेदी बोल देंगे उसको कोई काट नहीं सकता। उनसे महाराज जी ने ज्योतिष का अध्ययन किया और पहली शिक्षा मिली महाराज जी को। महाराज जी बताते हैं कि बचपन में जब बैठाते थे बाबा तो श्लोक देते थे याद करने के लिए, और श्लोक याद करने को कहते थे इसको घोट डालो। तो आप वैद्यों को दवा घोटते हुए देखे होंगे, जैसे चीनी घोटते हैं किसी चीज को गाढ़ा करने के लिए, तो कहते थे कि अब ये याद तब होगा जब तुम इसको लेके 108 बार माला पे कर जाओ। ये दोहरावनी क्रिया थी, तो ये गुरु ने सिखाया उनके, और उससे उनको श्लोक याद हुए। शास्त्री की बात हो रही थी तो पंडित कृष्ण शंकर शास्त्री जिन्होंने भागवत का सारा संग्रह किया, सारी टीकाओं का, वो एक बार वृंदावन आए और उनको मुक्तिस्कंद दी गई, तो उन्होंने मुक्तिस्कंद को सिर पे रखा और साष्टांग लेट गए। लोगों और झरझर रोए, कृष्ण शंकर शास्त्री की आंखों से खूब आंसू आते थे महाराज जी का स्मरण करके। तो लोगों ने पूछा आप क्यों ऐसे रो रहे हैं, तो महाराज जी ने कहा, कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने, आप लोगों ने नाम सुना होगा, परिचित तो नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि हम लोग जीवन भर लगे रहते हैं कि ये शब्द हमको याद हो जाए, ये श्लोक हमको याद हो जाए, ये शास्त्र हमको याद हो जाए। हमने महाराज जी के जीवन में ये देखा कि ये शास्त्र, ये श्लोक, ये श्रुतियां महाराज जी के पीछे पीछे घूमते थे, ये हमको कहीं न छोड़ दें। तो ये महाराज जी के जीवन की विलक्षणता थी। ये पंडित चंद्रशेखर द्विवेदी उनके गुरु, प्रथम गुरु घर के पंडित रामभुवन शास्त्री काशी में,
व्याकरणाचार्य, पंडित राम परीक्षण शास्त्री, ये सारे महाराज जी जिनसे एक अक्षर भी ग्रहण किया हो उसको यावत जीवन महाराज जी नहीं भूले। ये शास्त्रोक्त जो हमारी एकाक्षरम प्रदातारम यो गुरु अवमन्यते की जो श्रुति है वो महाराज जी के जीवन में एक एक कदम पे दिखती है। जिससे एक अक्षर भी सीखा है उसका नाम जीवन भर लेते रहे। तो पंडित राम परीक्षण शास्त्री, शिव कुमार शास्त्री, रामभुवन उपाध्याय, काशीनाथ जी, ऐसे ये नाम जो हैं वो बहुत सबके आगे महर्षि महामहोपाध्याय पंडित पूज्य श्री ऐसे करके बोलते थे और कहते थे कि मैं एक नाम लेता हूं और मेरा हृदय उनके दिए हुए प्रेम से भर जाता है। ये महाराज जी की भाषा थी, ये महाराज जी की शैली थी। तो महाराज जी के गृहस्थ जीवन में इतने गुरु प्राप्त हो चुके थे। महाराज जी चार गुरु और अपनी तरफ से बताते हैं। महाराज जी बोलते हैं कि मेरे वैराग्य गुरु भिक्षु स्वामी श्री शंकरानंद जी हैं, वो ऋषिकेश में रहते थे और जहां रहते थे वहां ततैयों ने चमगादड़ों ने घोंसला बना रखा था। तो महाराज श्री ने कहा कि हम इसको साफ कर देते हैं। तो वो वैराग्य गुरु थे, क्या निष्ठा थी उन महात्मा की, भिक्षु स्वामी शंकरानंद जी की। उन्होंने कहा कि ये अपना उसे घर मानते हैं, मैं तो इसे अपना भी घर नहीं मानता। जिस स्थान में मैं रहता हूं उसको मैं अपना नहीं मानता। ये ततैये ये तलैये जो भी हैं यहां पे पक्षी हैं ये अपना मानते हैं, इनको अपना रहने दो, इनको मत हटाओ, हमको ले चलना हो तो कहीं ले चलो। ये वैराग्य निष्ठा भिक्षु स्वामी श्री शंकरानंद जी से। तो वैराग्य गुरु उन्होंने भिक्षु स्वामी श्री शंकरानंद जी को बनाया। बहुत कृपापूर्वक शंकराचार्य की परंपरा में ब्रह्मानंद जी सरस्वती से आचार्य परंपरा ग्रहण की महाराज श्री ने। महाराज श्री ज्ञान गुरु परम पूज्य स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ जिन्हें हम उड़िया बाबा जी महाराज के नाम से जानते हैं उनको माना। महाराज जी ने कहा कि दैविक शक्ति जो ईश्वर शक्ति है वो एक बार आई, प्रकट हुई और चली गई, वो जीवन भर साथ नहीं रही। पर जो ज्ञान की स्पष्टता थी वो हमको उड़िया बाबा जी से मिली। तो ये ज्ञान गुरु थे। और एक गुरु और अध्यात्म गुरु हम गुरु महाराज श्री कृष्ण को मानते हैं। तो ये चार गुरु की परंपरा महाराज श्री अपने जीवन में बताते रहे हैं। और महाराज जी का जीवन तो जैसे स्वामिनी जी बता रही थी, बच्चों के साथ बच्चे और विद्वानों के साथ विद्वान। एक वाक्य बोलते थे उसमें जिसको जो लेना हो, जैसे ब्रह्मा जी द बोले और देवताओं को दमन मिल गया, दैत्यों को दमन मिल गया, दया मिल गई और मनुष्यों को दान मिल गया। तो ऐसे ही महाराज जी के हर वाक्य शास्त्रोक्त थे, शास्त्रीय पद्धति से थे। और बहुत कोई बच्चे आते थे एमए बीए पीएचडी किए हुए अंग्रेजी पढ़े हुए, वो पूछते थे ऐसे महाराज जी गुरु क्यों बनाते हैं। तो अब महाराज जी उसी से पूछते थे, बेटा तुम पूछ क्यों रहे हो, तो क्या कुछ जानना था, तो क्या इसीलिए गुरु बनाते हैं। इतना सरल था। तो एक ऐसे सत्संग कर रहे थे तो बीच में एक उठ गया, थोड़ा विक्षिप्त सा था, उसने पूछा गुरु घंटाल क्या होता है। प्रवचन चल रहा है और प्रवचन के बीच में उठ के पूछता है कि गुरु घंटाल क्या होता है। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा तेरे ही ऐसा होता है, अब बैठ जा। तो बोले गुरु क्या करता है, तो बोले कुछ नहीं करता है, खाली तुम्हारे जीवन को गौरवशाली कर देता है। ये ऐसे प्रश्नोत्तर जो हम लोगों को सहज होते हैं और एकदम शास्त्रीय हैं, कहीं से इनको काटा नहीं जा सकता। तो क्या कि गुरु क्या करता है, क्या वजन होता है, तुम्हारा जैसे ऑफिस में देखते हो पंखे से फड़फड़ फड़फड़ कागज करता है उसके ऊपर वेट रख देते हैं, तो क्या गुरु भी यही काम करता है, जो तुम्हारी इच्छाएं फड़फड़ा रही हैं, तुम्हारा विचलित हो रहा है उस पर गुरु आके बैठ जाता है, तुम्हारा फड़फड़ाना बंद हो जाता है। ऐसे ऐसे महाराज जी के असंख्य हमारे, अब मैं तो इनके आशीर्वाद से ही बोल पा रहा हूं और बस आप लोगों के प्रेम से मेरे, हम तो सुनने आए थे यहां, तो महाराज जी की कृपा मिली आप लोगों का। संन्यास गुरु महाराज जी का संन्यास गुरु तो स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती, मैंने बताया महाराज जी शंकराचार्य की परंपरा में दीक्षा उन्होंने ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी से ली, प्रयाग में ली थी 1933 में उन्होंने, और आके किसी को नहीं बताया, घर से सीधे आ गए और कहे कि मैं आ गया। तो गुरुजी ने भी नहीं पूछा कि क्या आ गए, उन्होंने कहा कि लोगों से कि इनके संन्यास की तैयारी करो। तो ये तारतम्य था दोनों में। वो कहे कि मैं आ गया और ये कह रहे हैं कि तुम इनके संन्यास की तैयारी करो। घर में भी किसी को नहीं मालूम, बाद में पता लगा। तो सब जगह तो दुख सुख मनाते हैं, बताते हैं कि उनकी माता जी थी, उन्होंने बैंड बाजो वालों को बुलाया और गांव में मिठाइयां बांटी कि आज हमारा बेटा गांव का गुरु न होके विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये तो उसी परंपरा से हमारे बीच में स्वामी श्री प्रीतमानंद जी महाराज पधारे हैं वृंदावन से। हम आपकी वाणी का लाभ लेना चाहते हैं, मेरे से जो त्रुटि हुई क्षमा करेंगे। स्वामी श्री प्रीतमानंद जी
सुन्दुरांगं दरोद्यन मदन नयन योगं मूर्ति देव्या मुरादं काश्मीरलेप्ते भालं ललित तुलसिका मुक्तिमानिबाल हरिशोन हरीन्द्रं रघुकुलतिलकं ध्यान इस्मतांच वक्त्रं रोमांचचंचत तनुमरुणिपटुं मारुतिं चिन्तयेऽहं वरपीडं नटवरे वपु कर्णयोरुकर्णिकारं विव्रतिवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरिसुधया पूरयङ्गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः।
दो मिनट भगवान् का नाम ले लें।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद
बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा राधा रमण हरि गोविंद बोलो हो गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो लो राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
भोले वृंदावन बाकी विहारी लाल की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में शास्त्रा दंडवत प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री महाराज श्री जी के श्री चरणारविंदों में शास्त्रा दंडवत प्रणाम। आज सभा के हमारे मंच में बगल में विराजमान अध्यक्ष मोदी जी के श्री चरणारविंदों में शास्त्रा दंडवत प्रणाम। मंच में सभी विराजमान संत उनके चरणों में प्रणाम। विद्वज्जन भगवत कथा अनुरागी सज्जनों एवं भक्तमती माताओं और पूज्य महाराष्ट्री जी के हमारे ठष्टीगण जो बैठे हुए और सभी उनके भक्त, आप भी जितने यहां विराजमान सब उन्हीं के रूप में, उन्हीं के ही स्वरूप में, उन्हीं की कृपा से सब यहां बैठे हैं, इसलिए आपके भी सबके चरणों में मेरा बारम्बार प्रणाम। सब लोग यहां बैठ करके गुरु पूर्णिमा के पर्व अवसर पर बहुत ही आनंद पूर्वक सबके बातों को श्रवण कर रहे थे। परम पूज्य महाराज श्री जी का आप लोगों ने नाम लिखा और खूब बड़े प्यार से श्रवण किया, सुनते भी चले आ रहे कि महाराज श्री जी जैसे महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन उनकी वाणी आज भी है, उनकी वाणी है। लेकिन एक बड़ी सुंदर चौपाई है रामचरितमानस में, आप लोगों को स्मरण होगी कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, बहुत सुंदर चौपाई है। और इसके भाव भी बड़े सुंदर हैं कि गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाए, गुरु के वचनों पर विश्वास। अब कैसी गुरु के वचनों पर विश्वास, तो इसी चौपाई का भाव यदि श्रीमद् भागवत में देखेंगे तो श्री सूत जैसे महापुरुष से सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया कि हमारे जीवन का अज्ञान मिट जाए, अंधकार मिट जाए और भगवान की दिव्य कथाओं में या भगवान के दिव्य लीलाओं में या भगवान के दिव्य स्वरूप में हमारा मन लग जाए। ये प्रश्न श्री सूजी महाराज से किया। अब सद्गुरुदेव भगवान वचन दे रहे हैं, लेकिन उन वचनों का पालन करने वाला यदि व्यक्ति है तो काम बन जाएगा। तो हमारे पूज्य महाराज श्री जैसे महापुरुष ने, आप लोगों सबको ज्ञात है कि ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में कितना बोले, लेकिन जिन महापुरुषों के शब्दों को यदि हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो हमारी गुरु पूर्णिमा सार्थक है। अब कैसे धारण करना है, तो पूज्य महाराज श्री जी महापुरुष जैसे महापुरुष बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत दर्शन में आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, एकादश स्कंद में, नवयोगेश्वर संवाद में, क्रमशः आप देखेंगे तो एक एक प्रश्न किया जा रहा है और महापुरुष लोग उत्तर देते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार से पूज्य महाराज श्री जैसे महापुरुष उत्तर दे रहे हैं, इस जगत में यदि आपको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पहले तो श्रद्धा लाइए और फिर विश्वास। यदि आपके जीवन में श्रद्धा आ गई और विश्वास यदि आ गया तो समझ लीजिए आपका काम बन गया, और श्रद्धा विश्वास यदि हमारे जीवन में नहीं आया तो फिर हमारे जीवन में काम नहीं बन सकता है। अज्ञान की निवृत्ति तभी हो सकती है जब हम अपने को अज्ञानी मान बैठे और गुरु के ज्ञान को हम अपना ज्ञान माने, तभी हमारे जीवन में प्रकाश हो सकता है। और जब तक हम अपने आप को ज्ञानी मानते रहेंगे तब तक गुरु के ज्ञान को हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो पूज्य महाराज श्री जैसे महापुरुष वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में, मैं तो महात्म्य की कथा पर ही आपको थोड़ा सा चिंतन कर रहा हूं, और महात्म्य में ही श्री सुखदेव जैसे महापुरुष, श्री सूत जैसे महापुरुष और श्री सनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है कि हमारे ज्ञान की निवृत्ति माने अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। उसी प्रकार से हम लोग भी पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में आकर के बैठ करके बस यही प्रार्थना करें कि हे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, हमारे जीवन में भी यदि अंधकार है तो उसको आप दूर करें, क्योंकि सामर्थ्यता आप में है, हम में नहीं है। आपकी कृपा से ही हम आपके पास आ सकते हैं और आपकी कृपा से ही हम आपके स्वरूप को जान सकते हैं। तो जब गुरु कृपा हो जाती है तभी भगवत कृपा हो जाती है सज्जनों, और जब गुरु कृपा नहीं होती तो भगवत कृपा भी नहीं मिलती है। तभी शास्त्र बोलते हैं और शास्त्र तभी बोलेंगे जब गुरु कृपा हो जाए, लेकिन गुरु के चरणों में अनन्य भाव, अनन्यता से, जैसे गीता में भी बड़ा सुंदर श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते, माने अनन्य चिंता, माने और चिंताओं को छोड़ करके जब गुरु के चरणों में समर्पण हो जाए तब गुरु कृपा कर देते। तो शास्त्र भी बोलता है, फिर व्यक्ति नहीं बोलता है, माने गुरु ही बोलता है। तो पूज्य महाराज श्री जैसे महापुरुष की कृपा आप सबके ऊपर बरस रही है, और बरसती नहीं होती तो आज ऐसे महापुरुष की आज इतनी सुंदर जयंती में हम लोग यहाँ कहाँ बैठे होते। तो ये भी उनकी कृपा है
कि वो हम लोगों को यहां पर बैठाल करके और देख रहे हैं। अनेक अनेक रूप भगवान के अनेक अवतार, ऐसी महापुरुष के अनेक अवतार, तो ये तो लीला है भगवान की। तो इस दिव्य लीला में हम लोग प्रवेश करके उन महापुरुषों के चरणों में बैठ करके हम प्रार्थना करें, याचना करें कि हे सद्गुरुदेव भगवान, हमारे जीवन में भी वो ज्ञान दें, हमारे जीवन में भी वो भक्ति दें, हमारे जीवन में भी वो वैराग्य दें, और हमारे जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जैसा आपका भाव वैसी हमारा भी भाव बना रहे, यही हमारी प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना सद्गुरुदेव के चरणों में हो सकती है। अधिक समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे स्वामी जी जो महाराज श्री जी के बड़े ही आनंद, बाल अवस्था से मैंने देखा महाराज श्री जी को भी हंसाते थे और आपको भी अभी हंसाएंगे, और उनको अभी जाना भी है, तो बीच में मैं डिस्टर्ब ना करूं, क्योंकि उनकी फ्लाइट यदि लेट हो गई तो मैं भी पाप का भागी ना बनूं, तो उनको भी जाना है। तो अधिक ना कह करके बस इतना ही कहूंगा कि पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में मेरी ये वाणी अर्पित हो, और आप सबको महाराज श्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, और महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, और आप सबका ये मन, आपका ये तन महाराज श्री जी के बताए हुए अनुसार लगा रहे साधना में। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम, राधे राधे राधे।
बहुत बहुत सुंदर भाव रखे हमारे स्वामी श्री प्रीतमानंद जी महाराज ने। महाराज श्री ने वेद के उत्थान के लिए, वेद के प्रोत्साहन के लिए यावत जीवन किया, और हमारे ब्राह्मणों के लिए, भूदेवों के लिए बहुत सद्भावना थी। उनका कहना यह था कि ये जो लोग पूजा या अनुष्ठान कराते हैं, ये जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेसमैन लोग हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो अपनी कमाई से ब्राह्मण का पोषण करें। स्पष्ट वो बोलते थे इस बात को, और इस बात को हम यहां पे आज गुरु पूर्णिमा है तो दोहरा देते हैं। उनका, महाराज श्री का कहना ये था कि यदि ब्राह्मण ठीक से पढ़ा नहीं होगा, शास्त्र का ज्ञाता नहीं होगा, तो वो आपका अनुष्ठान ठीक नहीं कराएगा, वो आपके मंत्र ठीक नहीं बोलेगा। तो उसके मंत्र की अशुद्धि का जो दोष है वो ब्राह्मण का नहीं, उसके यजमान का होगा। तो यजमानों का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण निश्चिंत होकर पढ़ सके, उसको जीविका की चिंता न हो, वो शांति से अपना जीवन वेद अध्ययन में लगा सके। उसको निश्चिंत करने का जो भार है वो हमारे वणिक या व्यापारी वर्ग का है। जो लोग कमा रहे हैं वो ब्राह्मणों का पोषण करें, ये महाराज श्री का स्पष्ट निर्देश था। ब्राह्मणों से पूछा जाता था, महाराज जी के पास आते थे, द्रविड़ लोग आते थे, दाक्षिणात्य ब्राह्मण बहुत आते थे, तो उनसे पूछे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो कहे अब बच्चों को संस्कृत या वेद नहीं पढ़ाते। तो कहे क्यों, तो कहे कि अब मैं वेद पढ़ा दूंगा, हम लोग वेद पढ़ाएंगे तो उनको कोई अब लड़की नहीं देता, कन्या नहीं देता, विवाह नहीं होता। तो एक स्थिति ऐसी थी उस समय, पर अब तो बहुत सुधार है महाराज श्री के संकल्प से और हमारे महात्माओं के उससे कि अब ब्राह्मण खुश हैं, हो रहे हैं, और आगे भी बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चों को देख के खुशी होती है यहां पर। तो इन लोगों के प्रोत्साहन के लिए महाराज श्री का ये था। हमको याद है जब वृंदावन में 101 रूपये रुद्राभिषेक की दक्षिणा हुआ करती थी, तो महाराज श्री ब्राह्मणों को प्रोत्साहन देने के लिए 501 रुपए दिलवाते थे। तो ब्राह्मणों को जितना ज्यादा दो वो जितने खुश हो, ये देना व्यर्थ नहीं जाता। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, तो महाराज जी से किसी ने पूछा कि श्रद्धा से दो वो तो समझ में आता है, अश्रद्धा से दो ये हमको नहीं समझ में आता कि हमारी श्रद्धा न हो। महाराज जी ने कहा तुम पुलिस इंस्पेक्टर को कैसे देते हो, तुम वकील को कैसे देते हो, तुम डॉक्टर को कैसे देते हो, श्रद्धा से देते हो, तो वो तो निकल जाता है, अश्रद्धा से भी निकलता है, तो देते तो हो ही ना, तो श्रद्धा से दो, तो वो दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। तो ये कल्याण, ये उत्सव हमको अपनी जिस अवस्था है उस अवस्था से ऊपर उठा के रख दे। ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव हमारे जीवन में प्रकट है। महाराज श्री से पूछा, महाराज जी ने एक निगम चिंतन करके पुस्तक लिखवाई और उसमें महीधर, सायण आचार्य, उब्बट, सारे आचार्यों को जो वेद के जानकार हैं सबको उन्होंने कोट किया है कि किस शब्द के बारे में कौन सा आचार्य क्या कह रहा है, और बहुत ढंग से किया है। बोले कि ये जनगण मनगण कहां से गाते हैं लोग, तो कहे कि उन्होंने लिखा है ये जो गणानंतवा गणपति गुंग हवा में है, आप देख लेना वो जनगण मनगण अधिनायक और वहां विनायक, वो विनायक की उपासना है, गणपति की उपासना है, उसको उन्होंने अधिनायक कर दिया, राष्ट्र की उपासना कर दिया। जनगण मनगण की जो उत्पत्ति है वो गणानंतवा गणपति गुंग हवा में से है। कहे कि ये गांधी जी का बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, ये कहां से आया? भद्रम करणे भी श्रोणुयाम भद्रम पश्ये मा। हम बोलते हैं कि अच्छा देखो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, वो कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत करो। वही तो हुई बात, तो वही हुई ना। तो वेद वाक्यों को इन लोगों ने कैसे पलट दिया, इस बात पे महाराज जी का बड़ा ख्याल था। कहे कि ऋषिकुल हमारा विदेश चला गया, अंग्रेजों की जीभ उतनी मुड़ी नहीं, वो स्कूल होके लौट आया। तो इतनी इतनी मजेदार मजेदार। कहे कि ये एटिकेट आप लोग बोलते हुए क्या है? बोले इतिकृत है, हमारा संस्कृत का इतिकृत एटिकेट होके। तो इस ढंग से बहुत ही ये द्वार क्या है, तो द्वार उनकी जीभ मुड़ी नहीं, तो उसको द्वार को नीचे वाला दो ओ की जो वो था उसको ऊपर उठा के बैठा दिया, दोर कर दिया द्वार को, उन्होंने दोर कर दिया बोलने के इसने। ऐसे करके महाराज श्री ने वेदों के जो हैं वो बहुत ही निकाले शब्दों के। तो अब मैं परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वो अपने
ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम तच्छय्योरापृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अत्तुद्भिपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः ओम सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परम्पराम् निदये सर्व विद्यानाम् विषजे पवरोगिणाम् गुरवे सर्वलोकानाम् दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अध्यक्ष जी, स्वामी उमेशानंद जी महाराज, सभी हमारे संतगण विद्वानजन, हमारे आराध्य ब्राह्मण देवता सब बैठे हैं। बुद्धि जो निश्चय करती है वही व्यक्त वही बात को व्यक्ति कार्यान्वित करता है। आपका निश्चय हुआ यहां आना है, फिर सब व्यापार एक्टिविटी हुई यहां आने के लिए। बुद्धि में निश्चय जो होता है गलत या सही उसी ढंग से हम चलते हैं। तो बुद्धि को ठीक करने वाला, उचित दिशा में लगाने वाला, सन्मार्ग में स्थापित करने वाला कोई है तो वो है हमारा सद्गुरु। इसमें जो बेवकूफी बैठी है, नासमझी बैठी है, उसको जो दूर करता है और जीवन को सन्मार्ग में स्थापित करता है वो तो गुरु है। आज का जो दिन है गुरु पूर्णिमा, सचमुच में उसका नाम है व्यास पूर्णिमा। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो भी शास्त्र में कहा गया है सभी व्यास जी से आया है। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम, वेद को ठीक ठीक उन्होंने संकलन किया और एक एक शिष्य को पढ़ाया, शाखाएं सब पढ़ाई जैमिन इत्यादि को, और पुराणाचार्य भी है। जो बात वेदांत में अल्पाक्षर में है वो बात का विस्तार किया, सत्यम वद का विस्तार करके बताया कि सत्यवान का चरित्र कैसे था। धर्मम चर रामो विग्रहवान धर्म, अब देखो राम जी का धर्म क्या, उन्होंने कई कई को वचन दे दिया। ये हिंदू परंपरा देखो, एक बार वचन दे दिया तो हो गया, और कई कई ने अचानक मांग लिया कि मेरे बेटे को भरत को राजा बनाओ, दशरथ को कुछ दुख नहीं हुआ, बनाओ, राम जी बड़े प्रेम से उसको राजा बनाएंगे, मैं भी बना दूंगा, क्या बड़ी बात है, राजा रामचंद्र बने या भरत बने कोई फर्क नहीं है। पर दूसरी बात बहुत भयंकर थी, बिना अपराध कुछ नहीं किया है 14 साल जंगल में जाए, इलॉजिकल, बिल्कुल बिना कारण, क्यों भेजना किसी को, अयोध्या के बाद दूसरे नगर में रहे, जंगल में क्यों भेजना। ये बात कैकेयी ने कही, आपने हमको दो वचन दिया था, दो वरदान दिया था, हाँ दिया था, अब उसका पालन करो। अगर उस समय आज का मॉडर्न हस्बैंड मालूम ना, अगर वो होता तो क्या करता है, कौन से वचन की बात करती है तू, क्या 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 वचन, क्या साड़ी से ले लो, बोलो मत ज्यादा, प्राण जाए पर वचन न जाई, लघु कुल की असी जीत चली आई। ये धर्म है, कहीं लिखा हुआ नहीं था, कोई साक्षी नहीं था, बात मुंह से निकल गई, धर्मम चर। पूरे रामायण में देखो रामचंद्र साक्षात धर्म के विग्रह, हाथ पांव वाला धर्म आप देख सकते हैं, मनुस्मृति का धर्म देख सकते हैं। तो ये गुरु के पास जाकर हम जो शिक्षा प्रदान प्राप्त करते हैं उसमें जो गुरु शिष्य का संबंध है बहुत विलक्षण है। पहले तो किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करना ये बहुत बड़ा पुण्य है। जैसे पितामह जी क्या सुना रहे थे ना, इनको गुरु के रूप में सुत को स्वीकार किया, सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने स्वीकार किया, इतना बड़ा राजा उनको गुरु मानता है, तो बिल्कुल विरक्त है उसको गुरु मानता है। ये बड़ा पुण्य है कि हमारी किसी में श्रद्धा हो, ये हमारे जीवन को ठीक कर सकते हैं। गुरु शिष्य का संबंध विद्या ग्रहण और विद्या प्रदान करने के लिए होता है। आप लोग सब यही ध्यान रखो, सुनो, वो लोग करते रहेंगे। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासुत्तर रूपम विद्या संधानम प्रवचनगम संधि। दोनों का संबंध, एक पढ़ाता है दूसरा पढ़ता है, सचमुच में गुरु दृष्टि प्रदान करता है। ही ट्रांसफर्स द विजन, विजन अबाउट हु एम आई, मैं कौन हूं, जैसा मैं अपने को जानता हूं ऐसा मैं सचमुच में नहीं हूं, जैसा मैं बनना चाहता हूं वो मैं हूं, मैं दुखी होना नहीं चाहता हूं, मैं सुखी हमेशा रहना चाहता हूं, सुख स्वरूप में हूं। ये दृष्टि आपके विषय में, ये परिवर्तनशील जगत के विषय में, द दृष्ट नष्ट स्वभाव जगत जो है, क्षण भंगुर जो जगत है, उसका सच्चा स्वरूप क्या है। और जिसने इस जीव के लिए ये पूरा जगत का भोगायतनम बनाया, वो ईश्वर जो है उसका स्वरूप क्या है। ईश्वर को मानना एक बात है, पर गुरु के द्वारा जानना दूसरी बात है। और आप लोग याद रखना, ब्राह्मण को खास प्रार्थना करते हैं, ईश्वर एक ही चीज है जो जीवन में समझने की वस्तु है। ओनली नॉलेज रिक्वायर व्हाट ईश्वर आर। उपनिषद से ईशा वासुविदगम सर्व, या जो भी कुछ है वो ईश्वर है, इससे बड़ी चैलेंज क्या हो सकती है। ये दृष्टि, ये जो भी कुछ है, ये ईश्वर है, पर ब्रह्म है। तो मैं, यह और वह, इस तीनों को तीन नहीं है, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म है। ये दृष्टि प्रदान जो करने वाला है उसी को कहते हैं सदगुरु। आजकल के लोग बोलते हैं सतगुरु देव की जय, मालूम है, सुनते होंगे। हमारे गुरु जी बहुत हंसते थे, कोई सतगुरु देव बोलता था, माने जो मर गया है उस गुरु के लिए क्या बोलते हैं, सतगुरु देव की जय। जो हिंदा उसको सतगुरु कैसे कहेंगे, सामने खड़ा है, सदगुरु देव की जय। ओ गुरु, सतगुरु इसलिए कहते हैं कि वो वेदांत के द्वारा जीव ब्रह्म ऐक्य की दृष्टि प्रदान करता है, उसी का नाम है सच्चे अर्थ में सदगुरु। अखंड अखंडार्थ बोधक वाक्य जो उसका जो निर्णय कराता है वही है सदगुरु। आप देखिए, इस स्पष्ट दृष्टि आरभ्यते जीव जगत परात्मा इति, मैं यह और वह तीनों के विषय में स्पष्टता जो कराता है। और ये दृष्टि ऐसी है उसमें अपूर्णता नहीं है, पूरे पूरे एक दीपक से दूसरा दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो दीप शिका आधी जाती है कि पूरी जाती है, पूरी जाती है। द ट्रांसफर फ्लेम इज नॉट हाफ, इट इज टोटल। मिलियंस ऑफ फ्लेम कैन बी देयर, असंख्य दीप हो सकते हैं, पर दीप शिका सब में क्या है, वही पूर्ण है। असंख्य गुरु हो सकते हैं, नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम शक्ति च तत्पुत्र पराशरम, हमारे गुरु तक ये परंपरा चली आ रही है, असंख्य गुरु है। पर जो दीप शिखा की तरह जो अग्नि तत्व है, जो दृष्टि है, वो वही पूर्ण है। न्यूटन को जो ज्ञान था गुरुत्वाकर्षण का, और आप पढ़ के वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, दोनों में फर्क एक ही है, एक है, कोई फर्क नहीं होता है। ऐसे ज्ञान पूर्ण होता है। ऐसे जो आचार्य है, ऐसे सभी जो गुरु है, इन सबको याद करने के लिए आप गुरु को कुछ नहीं दे सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जनक को, ब्रह्म लोक प्रापितोसि। अरे याज्ञवल्क्य कहते हैं, राजा जनक, आपको ब्रह्म एव लोक ब्रह्म लोक, ब्राह्मण लोक नहीं किया, ब्रह्म ही लोक है, ब्रह्म ही आत्मा है, ये बोध करके आपने ब्रह्म में प्रवेश कर दिया है, आप ब्रह्म ज्ञानी है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पूरा अपना राज्य आपको प्रदान करता हूं। जनक का राजा कोई छोटा नहीं था, और मैं आपकी सेवा में एक सामान्य सेवक की तरह मैं अपने को भी नियुक्त करता हूं, सब कुछ गुरु को समर्पित है। ये उपनिषद का वर्णन है, और उपनिषद में ये जो दृष्टि है वो कहीं कलुषित न हो जाए, आत्मा के विषय में जो दृष्टि कलुषित न हो जाए, इसलिए संप्रदाय है। आप संप्रदाय को समझिए, परंपरा की रक्षा करने के लिए संप्रदाय होता है। एक एक शब्द जो है महान अजम, अजर है, अमर है, अमृत है, अभय है, ब्रह्मासि। इस प्रकार से उपनिषद वर्णन करता है। ये महान व्यापक ब्रह्म जो है वो जन्म रहित है, इसलिए वृद्धावस्था रहित है, अजर है, इसलिए उसका मृत्यु नहीं, अमर है, इसलिए अमृत है। और द्वैत बिल्कुल नहीं है। जब कार्य अविद्या का कार्य का निषेध कर दिया, अविद्या कारण का भी निषेध हो गया, मानी अविद्या काम कर्म काम क्रोध रहित है, वो तू ब्रह्म वही है। इतना बड़ा उपदेश है। तो गुरु उपदेश करने के लिए ये शब्द को खोलना, अजम मानी क्या, जो कभी पैदा नहीं होता है। और श्री कृष्ण गीता में शब्द को ज्यादा खोलते, न जायते न म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा पविता वान भूय है। क्लियर? ऐसा नहीं था पहले था और अब नहीं है, ऐसा नहीं अब है आगे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं आगे होगा फिर नहीं रहेगा, नहीं। तीनों कालों में आत्मा जन्म रहित है, तस्मात नित्य है, तस्मात अजर है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण। इस शब्द को खोलना कोई सामान्य नहीं है। नित्य मानी इटरनल नहीं होता है सिर्फ, इटरनल मानी कोई चीज समय में लंबे समय से उसको शाश्वत नहीं कहते, जो काल का अधिष्ठान है, काल जिसमें है और जिसपे काल का प्रभाव नहीं है, जो कालावच्छिन्न नहीं है, उसी को कहते हैं नित्य। इस प्रकार से शब्द को कैसे खोलना इस संप्रदाय बताता है, वो भी अनादि है। भगवान शंकराचार्य महाराज खोल के बोलते हैं, असंप्रदाय वित्तु मूर्खवत उपेक्षणीय। जो संप्रदाय को नहीं जानता है, हमारे प्रेमपुरी महाराज ऐसे थे, यहां बैठते थे उस जमाने में, तो कोई शास्त्र के विरुद्ध अनशन बात करे, बोले जाओ पहले वेदांत सीख क्या हो, यहां तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं। ये यहां की मर्यादा थी। महाराज जी भी किसी को आश्रम के स्टेज पे बोलने नहीं देते थे, पहले अपने रूम में बैठा के कहते जरा सुनाए, उनको बोलने को सुनते, फिर कहते वहां की बोलने योग्य हो के नहीं, सभा में अलाउड नहीं करते थे। ये परंपरा है। आज तो जो भी कुछ सीख गया है बोलना शुरू कर देता है, इट इज पॉसिबल फेलोज। आप जब दूसरे को सुनाते पढ़ाते आप बिल्कुल बेजवाब छिंदार नहीं हो सकते हैं। ये हमारी परंपरा इतनी टाइट है कि असंप्रदाय वित्तु मूर्खवत उपेक्षणीय। और इसको परंपरा के रूप में आज हम किसको याद न करें। पर एक बात है, नारियली पूर्णिमा के दिन समुद्र में जो तरंग हमारे सामने आ जाए उसकी पूजा करते हैं, तो किसकी पूजा हो जाती है? समुद्र की। शालिग्राम जी की पूजा करो, पूरे व्यापक विष्णु की पूजा हो जाती है। आपके सामने जो भी गुरु मिले, आज कोई भी गुरु मिले उसको व्यास जी के रूप में प्रणाम कर लो, काम हो जाएगा। क्योंकि सब गुरुओं में गुरु कौन है? गुरु तत्व एक है। हमारे प्रातः स्मरणीय महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज जब उड़िया बाबा की स्तुति में पूर्णानंद तीर्थ स्तव लिखते थे, मेरे चलते फिरते तो श्लोक बनाते जाते थे और कहते मैं कोई एक काल में आया देश में आया गुरु की स्तुति नहीं कर रहा हूं, तो तीनों काल में अखंड गुरु तत्व है उसकी स्तुति कर रहा हूं। ये सभी गुरु के लिए चल सकता है, ये बात है। तो वो गुरु तत्व को आज हम सब हिंदू यहां बैठे हैं, सब बैठ के गुरु की पूजा करें, गुरु को स्मरण करें, स्तुति करें और उस गुरु परंपरा का लाभ लें। सबसे बड़ा काम क्या है? जाइए सगुरु मेवा भी गच्छेत, गो टू द राइट टीचर, लर्न फ्रॉम हिम। इसलिए हमको प्रेमपुरी अच्छा लगता है। यहां कोई ना कोई हर रोज क्या करता है, हमारे स्वामी उमेशानंद जी प्रस्थानतरी का आजकल शंकरानंद जी पढ़ा रहे हैं, गीता भी प्रस्थानतरी के अंतर कहते हैं, अध्ययन अध्यापन चलता है, बहुत अच्छा है, गुड लिसन, बहुत फायदा है। हमारे प्रातस्मरणीय महाराज श्री जीवन के अंतिम क्षण तक सत्संग कभी नहीं छोड़ा। मुझे कहते हैं सत्संग से सब प्रकार का अनर्थ दूर होता है, और दूसरी बात हमको बताते, हम तो जिज्ञासु तो सब बच्चे थे, उनका वेद के मंत्र जो उपनिषद का पाठ तुम करते हो कराते हो, उनका शांकर भाष्य के अनुसार अर्थ को समझो और एकांत में बैठकर चिंतन करो, और हमको तुम्हारा चिंतन सुनना है, भाष्य को सब मालूम है। और कहते थे चिंतन में वो रासायनिक क्रिया होती है कि चित्त के अनादिकाल से प्राप्त सब दोष को दूर करता है। हमको महाराज ने कहा था प्रवचन में प्रारंभ में सामान्य बात करना, बीच में गंभीर बात करना और अंत में सबको हंसाना। देखो क्यों कि दोबारा आए इसलिए है ना। एक आदमी इतना कंजूस था कि 30वें फ्लोर से ऊपर से गिरा तो उसका घर था 6 मजले पे, तो उसने उसकी पत्नी को चिल्ला के कह दिया मेरी रसोई आज मत बनाना, बचाने के लिए है ना ये। और स्वामी अखंडा जी महाराज को पूछते थे कोई गुरु कौन है, तो कहते हैं जो शिष्य को गुरु बना दे वही गुरु है। और पूछते थे गुरु कौन है, जो गुरु शिष्य का भेद मिटा दे वही गुरु है। हम तो हमारे बाबा जी ने आज बहुत अच्छा अच्छा सुना, वो बहुत खुश हुए हमारे महाराज जी, इनके देख के हमको गुरु जी की याद आती है। देखो उनमें वही प्रवेश कर गए, इतना सुंदर प्रवचन वो भी करने लगे हैं, और हमारे जिसके हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं स्वामी उमेशानंद जी महाराज को सुनेंगे अभी, बहुत बढ़िया है। ओम शांति शांति।
आपका सत्कार
अभी पंडित सात जी का सम्मान हो जाएगा, सत्कार करेंगे, विद्वान का सत्कार हमारी परंपरा का सत्कार करते हैं।
सत्कार के लिए हमारे ललित भाई ग्रोवर श्री तिजोरी वाला जी भी आ जाए, और गए क्या प्रकाश भाई आप आ जाए, दैया जी आप आ जाए।
जब तक सत्कार तो नमस्ते के षोडश मंत्र
आज गौतम भाई जी शास्त्री का हम लोग व्यास पूर्णिमा के दिन सत्कार कर रहे हैं। अभी हम आचार्य गौतम भाई जी से अनुरोध करेंगे कि महाराज श्री के बारे में और अपने भाव पुष्पांजलि रखें।
संचिन्तयेद् भगवतः चरणारविन्दम् वज्रांकुशत्र
ध्वज सरोहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्तविलसन् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाविराहतमहद् हृदयान्धकारम् परम वन्दनीयानाम् स्वामिनाम् गुरुचरणानाम् गुरुचरणेषु मे नतयः समुल्लसन्तु। अभी स्वामी जी ने कहा कि गुरु उसे कहते हैं जो शिष्य को गुरु बना दे। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने भी यही कहा कि आप जगत में ढूंढने जाओ, पूरे विश्व के अंदर, त्रिभुवन के अंदर, तो गुरु के समान आपको कोई नहीं मिलेगा। उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। दृष्टांतो नैव दृष्टः त्रिभुवन जठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः। त्रिभुवन जठरे, शंकराचार्य जी कहते हैं कि त्रिभुवन के अंदर इनके जैसा आपको दृष्टांत नहीं मिलेगा। आप इसे किसकी उपमा देंगे? आप पारसमणि की उपमा देंगे? पारसमणि लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा सुवर्ण बन जाता है, मगर पारसमणि भी गुरु के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि पारसमणि लोहे को पारसमणि नहीं बना सकता है, मगर गुरु शिष्य को गुरु बना देता है। आज हम जैसे आज यहां बैठे हैं, वैसे हम भी छोटे छोटे थे और स्वामी महाराज की वाणी सुनने यहां चले आते थे। आज इस जगह पर हम बैठ गए तो ये गुरुजनों की कृपा है। आज उन्हीं के स्थान पर बैठे इन स्वामियों के चरणों में हम वंदन करें। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं कि इन स्वामियों के पास जाएं, हम प्रार्थना करें इनसे। स्वामिन नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या रुजव्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। रुजु अति कारुण्य, सुधा से भरपूर आपका जो कृपा कटाक्ष है गुरु आपको दियो। अभी स्वामी जी ने बताया वो दृष्टि देते हैं, इनके कृपा कटाक्ष हो जाए हमें सब कुछ मिल जाता है। स्वामी जी कहा करते थे कि उपचरितव्या संता यद्यपि कथयन्ति नैकम् उपदेशम् यास्तेषां स्वैरगतास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि। आपको संतों के पास, महात्माओं के पास, गुरुजनों के पास जाकर के बैठ जाओ, आप उनके साथ रहो। जरूरी नहीं उनके प्रवचन सुनना है, ऐसे भी बैठे हों और आप उनको सुन लेते हैं ना, यास्तेषां स्वैरगता, ऐसे ऐसे ही बात करेंगे वो शास्त्र बन जाता है। एक बार ऐसे ही उस जमाने में औरतें फूल डाले करती थी, वेणी डालती थी उसमें फूलों की, और चमेली के पुष्प ऐसे होते थे। तो बातों बातों में ही एक बात हुई कि चमेली शब्द कहां से आ गया। तो स्वामी जी ने कहा कि अमरकोश के अंदर जब पुष्पों का वर्णन है, इस पुष्प का नाम तो मल्लिका है और दूसरा नाम है यूथिका। तो पहले हस्तलिखित ग्रंथ लिखे जाते थे तो उसमें यूथिका च मल्लिका ऐसा लिखा था, तो च जो है ना वो म के साथ जुड़ गया लिखाई के अंदर। तो किसी ने सोच लिया वो चमल्लिका है भाई, इसका फूल है, चमल्लिका से ही चमेली हो गया। ऐसे ऐसे अखेनंद जी स्वामी बहुत अच्छी बातें ऐसे बता देते थे, बहुत सरलता से बता देते थे। जब इनकी कृपा थी मुझ पर बहुत, मैं मेरी 14 साल की उम्र में ही भागवत कथाकार हो गया। मेरा साहित्य व्याकरण हो गया था, न्याय में प्रवेश हो गया था उस वक्त। और जब काशी में मैं साधुवेला में पढ़ता था, शास्त्री होने के बाद आचार्य दर्शन से जब कर रहे थे, प्रथम खंड में मुझे 95% मिले और फिर वहां पर एक शास्त्रार्थ प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में मैं विजयी हो गया। तो वहां से लोग जब वेकेशन में ऐसे आते थे, लौटते थे, स्वामी जी के पास गया और ये सब, मुझे लगा स्वामी जी खुश हो जाएंगे, मैं उनको बात कहूंगा तो उनको आनंद हो जाएगा। ऐसा सोच करके मैं ऐसा गया कि मैं विजयी हुआ, मुझे पदक मिला, चषक मिला। तो मैंने जाकर जब बात बताई तो सीधे कह दिया उन्होंने, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुतान दावत मुक्त है न तो मुक्त है। एक दृष्टि दे देते हैं, ठीक है, मगर हमको जहां जाना है, हमारा उद्देश्य जीवन का एक निर्दिष्ट एक दृष्टि उन्होंने दे दी कि जो हमारे सारे प्रवाह विप्रस्थान्तरी गुरुवर्य कह रहे हैं, सभी को वंदन में यहां करता हूं, निशानंद जी को, गुरुनानंद जी को, विभवानंद जी, ब्रह्मचारी जी, सूर्यनारायण जी, यहां सोमदत्त जी, बड़ा अच्छा है सोमदत्त नाम, कितना यज्ञ करने के बाद, बड़ा बड़ा सोमयाग करने के बाद, बड़े बड़े ऋषि वो सोम रस पिलाते थे तब उनका प्रसाद मिलता था। जो येन दत्तम सोम सर्वेभ्यः सह सोमदत्तः, तो सबको जो सोमदत्त पिलाते हैं उनको वंदन। और विश्वनाथ जी जो इस आयोजन जुड़े हैं, ये सभी महानुभावों को मैं वंदन करूंगा। महाराज जी के प्रवचन सुनने जब आते थे, एक बार उन्होंने भागवत जी के श्लोक का बड़ा अच्छा वर्णन किया था। अभी गुरु क्या देता है, ऐसी बात है ना, सारे विश्व में भगवान फैला हुआ है, हर एक जगह पर है। तो सारे विश्व के इस भगवान, हमारे आसपास सब जो कुछ बैठे हैं वो भगवान, जब गुरु जब देता है शिष्य को तो उसको भगवान मान करके देता है। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि का ख्यान सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा, कपिल मुनि ने कहा है, अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयं अरहे दानमानाभ्याम मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयं, मैं सारे विश्व में जितने लोग हैं, जितने भी भूतमात्र हैं, कीड़ी मकोड़ी से लेकर के चींटी से लेकर के हाथी तक, ये जो सारे मनुष्य आपके आसपास है, सब में भगवान है। और इस सारे विश्व में जो भगवान, इसकी पूजा कैसे की जाए, तो मार्ग अब दिखाया, अरहे दान मानाभ्याम मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा, आप पहले उनको दान दो, आपके पास जो है उसे दे दो। आप दान दे देंगे तो उसमें बैठे हुए भगवान की पूजा होगी। मान लो आपके पास विद्या है, आपने विद्या दे दिया तो उसमें बैठा हुआ भगवान प्रसन्न हो गया, उसकी आपने पूजा की। आपसे कोई बड़ा है, आपके पास वित्त है, आप वित्त दे दो, आपके पास विद्या है, आपके पास जो कुछ भी आप देते जाओ, आपने उसमें बैठे हुए भगवान की पूजा की। आपसे जो बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, वित्त में बड़े हैं, आप उनको वंदन किए, उनको मान देंगे, हाँ, उसमें बैठे हुए भगवान की आपने पूजा की। आपके करीब आपके जैसे जो हैं, आपके मित्र हैं, आप उनके साथ मित्र भाव रखेंगे, आपके समान जो लोग हैं, तो उसमें बैठे हुए भगवान की आपने पूजा की। और एक अभिन्न चक्षुषा, एक समय ऐसा आ जाए कि आप दूसरों में कोई भेद न समझें, उस स्थिति पर आ जाए तो उसमें बैठे हुए भगवान की आपने पूजा की। तो ये जो गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन व्यास जी ने जो परंपरा आज 5000 साल से परंपरा आ रही है और स्वामी जी ने इस परंपरा को बहुत बढ़ावा दिया है, इन ब्राह्मणों की पूजा को जो अभी सोमदत्त जी ने कहा, ये पूजा करने के बाद सोचना क्या है कि वास्तव में हम इस पूजा के लायक हैं कि नहीं, हम कितना आगे बढ़े हैं। जो गुरु वो हो सकता है, जैसे दत्तात्रेय जी ने सबको गुरु बनाया, इसका मतलब है जिस दूसरों के पास से सीखने की इच्छा अंत तक जो रहती है वही गुरु बन सकता है। गुरु ऐसे होते थे शिष्यादिच्छेद पराजयम, मुझसे मेरा शिष्य आगे बढ़ जाए ये इच्छा रखता था। हरेक जीव अपने पूर्व जन्म के कुछ चीजें लेकर के आता है, उसके पास कुछ संस्कार रहते हैं, वो जिस घर में पला है, जिस वातावरण में पला है, वहां से भी उसने कुछ पाया है। और जब गुरु के पास आता है तो गुरु के पास जो कुछ भी है वो पूरा पूरा वो अपने शिष्य को दे दे रहे, समझो चवन्नी के जितना उसके पास है, और गुरु ने अपना पूरा रुपया दे दिया तो शिष्य सवाय हो गया कि नहीं। मगर शिष्य को यह समझना चाहिए, उसे अपनी चवन्नी ठिकाने पर रखनी चाहिए, अगर उसमें अहंकार आ गया तो हो गया काम से। तो गुरु गुरु बना देता है। अभी आपने सुना, हम स्वामी जी के चरणों में आज यहां बैठे हैं, व्यास जी से लेकर इस परंपरा को वंदन करें, स्वामियों के चरणों में वंदन करें, और इस पूर्णिमा के दिन हम अपने जीवन को परिपूर्ण होने के मार्ग में हम आगे बढ़ें, यही इनसे प्रार्थना करके मेरे आपको शब्दों को विराम दें।
बहुत सुंदर भाव हमारे शास्त्री जी ने रखे। महाराज श्री ने सोम की व्युत्पत्ति हम ही से पूछ दी कि सोम दत्त मतलब क्या समझते हो। तो जैसे आपने कहा सोम मतलब अमृत से, सोम मतलब चंद्रमा से, ऐसा हमने बताया जो हम बाल वक्त थे इस बच्चे जितने रहे हो, तो कहे नहीं, सौ उमा इति सोमा, जो शंकर पार्वती के साथ हो वो सोम। तो ये तो है। अच्छा, अब गौतम उठा लें हम। तो अब महाराज जी की प्रणाली में आज गुरु पूर्णिमा है, तो ये गौ मतलब इंद्री, तो जो इंद्रियों के अंधकार को दूर करे वो प्रकाशक बुद्धि, और वो बुद्धि हमारी गुरु एक, वो हुआ गौतम। गौ मतलब गाय, जो गायों का संवर्धन करे, जो गायों का रक्षण करे, जो उनकी दरिद्रता दूर करे वो कृष्ण। वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु दो गौतम। गौ पृथ्वी, जो पृथ्वी का अंधकार हरण करे सूर्य, बुद्धि का देवता वो है गुरु सूर्य, तीन। तो ये तीन तीन गौतम गुरु के रूप में गौतमाचार्य यहां उपस्थित हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। बना लेना ऐसे, तो ये तो क्या है कि बुद्धि का खेल है, तो दो उधर से मिला तो दो तीन इधर से मिलेगा। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से परम पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करता हूं कि ध्यान योग महाराज श्री का रिप्रिंट होके आया है, बारिश की वजह से यहां उपस्थित नहीं हो पाया, पर हमारे पास प्रतियां थी कुछ, तो ललित भाई प्रीतमान जी महाराज स्वामी जी के कर कमलों से उसका लोकार्पण करा दें, और उसके बाद उद्बोधन होगा, अध्यक्षीय उद्बोधन, फिर भूदेवों का सत्कार होगा। आप सब लोग शांति से बैठे रहें, इस आयोजन का आनंद लें। हर रे लगे न फिटकरी, रंग आए चोखा। आपका क्या जाता है थोड़ा समय तो।
आप यहाँ ध्यान में मत बैठिए थोड़ा देर के लिए, ध्यान दो कर ध्यान में बैठोगे तो यहाँ जो है ना लक्ष्मी चली जाएगी। लक्ष्मी के लिए कम से कम है ना योग तो करिए, पर लक्ष्मी योग करिए। लक्ष्मी कब मिले कब मिले कब मिले है ना। सर्वे गुणा कांसना मासुरयंति, ये सिद्धांत आएगी नहीं तो देखिए। ये ध्यान योग महाराज जी का पहले का पुस्तक अभी कलेबर में बड़ा हो गया, और इसका कीमत कितना रखा?
100 रूपये।
हाँ सस्ता है यो, 100 रूपया रखे हैं, परंतु कमीशन मिलेगा आज यदि
30%
30% कमीशन मिलेगा आज लेंगे तो
जी, एक सप्ताह तक
हाँ
50% कर दिए महाराज जी।
50
हाँ ऐसा किया है कि 20% दे रहे हैं साहित्य, 20% प्रेमपुरी और 10% हमारे राजकुमार जी शोरे वाला
सब्सिडी दे रहे
50%
सब्सिडी है सब्सिडी।
अभी 50 रूपये में हो गया महाराज जी, अभी 50 रूपये में अब हो गया एक सप्ताह तक के लिए।
अरे प्रवचन रह गया, प्रवचन तो हो गया, प्रवचन हो गया, महाराज जी का प्रवचन सुना, हमारे महाराज जी का प्रवचन दाएं बाएं बढ़िया से बढ़िया प्रवचन सुना, और सुनने का बाकी क्या गया। हाँ फिर भी आदेश है थोड़ा बोलूं तो देखिए, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा तो पूर्णिमा हर महीने में आता है, आती है कि नहीं? ये आषाढ़ी पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा के साथ गुरु लगा दिया, गुरु को चढ़ा दिया तो क्या बन गया? गुरु पूर्णिमा। हर महीने को गुरु पूर्णिमा बोलते हो क्यों? इस महीने में क्यों बोला? इसके नाम एक नाम और है व्यास पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको व्यास पूजा भी कहते हैं, आज व्यास पूजा होती है। नहीं बात तो गुरु है, गुरु गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु के पास कौन जाएगा? गुरु क्यों करना चाहिए? ये प्रश्न सब पूछते हैं। देखिए तीन प्रकार के गुरु माना गया है, नोदको बोधक मोक्षदर्श। एक गुरु होता है नोदक, व्याकरण के दृष्टि से। एक होता है बोधक और एक होता है मोक्षद गुरु। नोदक गुरु उसको कहते प्रेरणा देवे शास्त्र का, वंश परंपरा गुरु है कि नहीं? नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम से तत्पुत्र पराशरम से जो आप लोग पढ़ते हैं ना, ये कौन सा गुरु है? नोदक गुरु है, नोदक। क्यों? ये सब गृहस्थ गुरु है। नारायण से कौन पैदा हुआ? पद्मभवम। पद्मभवन से कौन पैदा हुआ? वशिष्ठ जी आए कि नहीं? तो वशिष्ठ जी कितने कितना पुत्र थे वशिष्ठ जी का? वशिष्ठ जी का ना 100 पुत्र वाला आए थे, सन्यासी है कि गृहस्थ है? हाँ इतना बेटा वाला है और सैन्य, वो 100 पुत्र को तो उसने मार ही दिया था। कौन? विश्वामित्र ने मार दिया था कि नहीं? तो बाकी भी कितना कुछ रहा होगा ना। तो नोदक वंश परंपरा के गुरु, प्रेरणा देने वाला आचार्य कहते हैं। बोधक गुरु विद्या देने वाले, गुरुकुल में रह करके जो विद्या का अध्ययन करते हैं ना, उनका नाम है बोधक। बोधक गुरु विद्या का एक शस्त्र विद्या एक शास्त्र विद्या, दोनों प्रकार के विद्या को अध्ययन या पढ़ाने वाले का नाम बोधक गुरु, और एक होता है मोक्षोदा गुरु, मुक्ति देने वाला गुरु। तो मुक्ति देने वाला गुरु कौन है, इसके लिए शास्त्र में उपनिषद में मंत्र बतलाया, परीक्ष्य लोकान कर्मसितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृत कृतेन स गुरु में अभिगच्छित समित पाणे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु में अभिगच्छित, तो गुरु का विशेषण बतलाया, गुरु कैसा होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, केवल श्रोत्रिय नहीं, केवल ब्रह्मनिष्ठ नहीं, उभय विशेषण से विशिष्ट जो गुरु होगा उनके पास जाना चाहिए। श्रुति को भी जानने वाला हो और आत्मा में निष्ठा भी हो, आत्मनिष्ठा होगा श्रुति का ज्ञान नहीं होगा तो इनके पास भी जाना नहीं। क्यों, उनके पास क्यों नहीं जाना, वो तो आपने आत्मनिष्ठ तो है, आपने को उद्धार संसार सागर से करेगा, परंतु जिज्ञासु को उद्धार नहीं कर सकता। कारण क्या है, जब जिज्ञासु जिज्ञासा लेकर गुरु के पास पहुंचेगा, को हम कदम इदम जातम कर्ता से को विद्यते, जैसे प्रश्न लेकर जाएगा गुरु, अगर श्रोत्रिय न हो वेदांत शास्त्र ना पढ़ा हो तो उत्तर दे नहीं सकेगा, तो उत्तर दे नहीं सकेगा तो ऐसा गुरु के आश्रय लेने वाला कैसा होगा। तो इसीलिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों विशेषणों से विशिष्ट जो व्यक्ति होगा उनको गुरु आना। ऐसे तीनों प्रकार के गुरुओं का लक्षण शास्त्र में उसमें विचार सागर में आया कहीं, एक होता लक्कड़ गुरु, एक होता पत्थर गुरु, पत्थर गुरु और एक लक्कड़ गुरु और एक पत्तल गुरु। पत्तल समझते हैं ना, भोजन करके पत्तल करते ना, करके उसको नदी के पानी में फेंक देते हो तो क्या होता है, वो स्वयं तैरता है, परंतु उसके ऊपर यदि एक पत्थर रख दो तो, मिट्टी का ढेला रख दो तो उसको लेकर तैरेगा पत्थर, तो क्या करेगा, डूब जाएगा। ऐसे संसार में एक पत्थर गुरु है जो अपने आप को उद्धार करता है, अपने आप को उद्धार करता है, परंतु कोई जिज्ञासु आया हमारा उद्धार करो तो शिष्य का भार ग्रहण नहीं कर सकते, स्वयं भी डूबेगा और शिष्य को भी डुबाएगा। इसीलिए पत्तल गुरु तो अपने आप को उद्धार करेगा पर दूसरा का भार सहन नहीं कर सकता। एक होता है पत्थर गुरु, पत्थर गुरु समझते हैं ना, पत्थर है, पत्थर को नदी में छोड़ो तो डूबेगा और उसका आश्रय लेने वाला को भी डूबो देगा, डूबाएगा कि नहीं डूबाएगा, नहीं। ऐसे जो अविद्याग्रस्त है, अज्ञानी है, अविवेकी है, मूर्ख है, ऐसे मूर्ख के जो परंपरा का नाम आते गुर तू चला मैं गुर आने वा, ये कहावत है महात्माओं में। तो ऐसे व्यक्ति जो पत्थर है, अज्ञानी है, अविवेकी है, उसको जो हमने गुरु बनाया तो क्या होगा, तू तो स्वयं डूबेगा और हमको भी डूबाएगा, अंधे नहीं बे नियमाना जथा अंधा। तीसरा गुरु है लक्कड़ गुरु, लक्कड़ कहते नौका को, नौका, नौका में बैठने वाला को नौका इस पार से उस पर लगा देता है, लगा देता है कि नहीं, और स्वयं ही लग जाता है। ऐसे लक्कड़ गुरु के जगह में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु समझना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु अपने आप को भी संसार सागर से पार लगाएगा और उनके आश्रय लेने वाला को भी पार लगा देगा। इसी बात को लेकर नोदक बोधक और मोक्षदक, अबे आदि पुराण में लिखा है गुरु तो जो कामी हो कृष्ण रूपा भगवान कृष्ण का स्वरूप समझ लेना। भगवान कृष्ण कैसा है कहते कामिना कृष्ण रूपा कामी गुरु कृष्ण के रूप में जानो है नहीं बात। और जो भी लोभी है तो वो किस रूप में जाना जाए बामन रूप में जानो बामन रूप में बामन लोभी है ये नहीं मांगा ना बलि से तो कामी और लोभी और क्रोधी गुरु हो तो नृसिंह रूप में जानो नृसिंह भगवान। तो ये तीन प्रकार के गुरु है ना मानो इस पर परंतु कहते इसमें कभी मनुष्यता बुद्धि नहीं करना क्यों गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु कैसा है साक्षात ब्रह्मा के रूप में है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है हमारा गुरु ब्रह्मा है हमारा गुरु विष्णु है अर्थात विष्णु के रूप में भी गुरु है गुरु के रूप में भी विष्णु है ब्रह्मा के रूप में विष्णु है विष्णु के रूप में भी ब्रह्मा है यानी बाबू और महेश्वर के रूप में भी गुरु है और महेश्वर भी गुरु के रूप में है इसीलिए गुरु में कभी मनुष्यता बुद्धि करना नहीं। कैसी भी अवस्था किसी भी अवस्था में गुरु को मनुष्य नहीं समझना हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में जानना। तो ऐसे ही तीन प्रकार के वे कहते हैं मोक्षद गुरु कौन होगा मोक्षद गुरु मुक्ति देने वाला मोक्षद गुरु है तो मुक्ति सब गुरु नहीं दे सकता याद रखना कौन देगा जैसे या अष्टावक्र ऋषि के पास जाकर के जनक जी ने कहा गुरु हमको उपदेश दीजिए हाँ मुक्ति दीजिए अष्टावक्र ऋषि ने कहा पहले दक्षिणा दे पहले दक्षिणा चढ़ा तो दक्षिणा क्या देगा दक्षिणा के रूप में तू आपने मन दे दे जनक जी ने आपने मन दे दिया फिर का उपदेश दे होते वो कैसे उपदेश मांग सकता है क्यों तू तो मन तो दिया मन के बिना तू बोलेगा कैसे जनक जी चुप हो गया। तो मुक्ति देने वाला स्वयं मुक्त होगा तो संसार सागर से वो पार होगा। तो परीक्षा लोकान कर्मसितन ब्राह्मण और निर्वेदम आया नास्ति अकृत कृतिना स गुरु में भी अभिगच्छे समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो गुरु के पास जाने के लिए क्या चाहिए अधिकारी बनना चाहिए ना अधिकारी बनोगे तब गुरु के पास जाओगे। तो गुरु के पास जा करके गुरु की परीक्षा करोगे कि नहीं गुरु हमारे गुरु होने लायक है कि नहीं है हम गुरु बनाने आपको गए तो परीक्षा करेंगे गुरु के अंदर योग्यता है कि नहीं हमारे गुरु बनने के लायक है कि नहीं है। तो तुम तो गुरु का भी गुरु हो गए गुरु का गुरु नहीं हुआ क्यों गुरु का तुम परीक्षा कर रहे हो। इसीलिए शास्त्र के प्रमाण के अनुसार शास्त्र श्रवण करके जा करके गुरु के पास श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जा करके उनको दीक्षा लो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम गुरु में अभी गच्छेत समित पानी होकर के जाना खाली रिक्त स्तम न गच्छे था खाली हाथ से मत जाना कहा गुरु के पास खाली हाथ से जाना है खाली हाथ भरा हाथ लेकर के गुरु के पास क्यों जाए खाली हाथ जाएंगे तब तो लाएंगे ना। तो गुरु के पास क्या चढ़ा वड़ा है तो उसको लाने के लिए क्या चाहिए हाथ खाली चाहिए झोला खाली चाहिए कि नहीं चाहिए। गुरु जी प्रसाद देगा ना तो प्रसाद लेकर आना है ना। तो यहां ऐसा नहीं समझना गुरु जो है ना यदि लोभी हो हमने क्या बोला था गुरु लोभी हो तो कैसे मानना चाहिए गुरु को भावान रूप में। परंतु देखो भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा गुरु लोभी है उसको मार डालना चाहिए गुरु लोभी हो तो गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेय भक्त भक्ष्य में प्रिय लोगे हत्वार कामांस गुरु नहीं है भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिदान। आप अर्जुन ने तो रोने लगा गुरु जी को मारो कैसे तो अर्थ कामान गुरु न हत्वा अर्थ कामे गुरु हो गुरु को मार डालो कहते तो अर्जुन ने मारा कि नहीं मारा नहीं मारा। अरे महावा उसमें एकादश स्कंद में जाकर देखो या ग्यारहवा अध्याय में देखो गीता के अर्जुन ने भीष्माचार्य को मारा कि नहीं मारा द्रोणाचार्य को मारा कि नहीं मारा कृपाचार्य को मारा कि नहीं मारा क्यों कृपाचार्य को नहीं मारा परंतु उसमें मारा वो आशीर्वाद मिला उसके बाद में अश्वत्थामा बोले व्यास हनुमान विभीषण कृपा परशुराम से सब कहते चिरंजीवी न एक चिरंजीवी होगा दुखी हो रहा है इन लोगों को चिरंजीवी कैसे बनाया। आप एक बुढ़ापा हम अनुभव कर रहे बुढ़ापा में कितना कष्ट होता है कि नहीं बूढ़ा भाई में बैठा नहीं जाता उठा नहीं जाता खाया नहीं जाता पिया नहीं जाता। ऐसे अगर कहां से द्वापर के अंत में उनको आशीर्वाद मिला चिरंजीवी होने का अभी कलेजुग में अभी 5000 पर व्यतीत हो गया है बूढ़ापा से क्या काम है। अभी हर एक बूढ़े कहते हैं कि भाई मर जाना अच्छा है मर जाना चला जाना अच्छा है परंतु मरना चाहने से मृत्यु आ जाती है क्या। अभी देखो ये आचार्य ये शस्त्र विद्या का आचार्य गुरु है कौन द्रोणाचार्य इनको मारा कि नहीं मारा क्यों वो अर्थलोभी था क्यों अर्थलोभी था कौरव का पक्ष दिया कौरवों का पक्ष दिया कौरव लोग कौन से था दुर्योधन का पक्ष का है दुर्योधन क्या था अर्थलोभी था कि नहीं पूरा राज्य हड़प कर लिया था। तो जिसको लोभी का साथ देने वाला भी लोभी माना जाता है लोभी का साथ देने वाला भी लोभी ही माना जाता है। इसीलिए भीष्म पिता महाकवि अर्जुन ने संहार किया कि नहीं। तो ऐसे आदि पुराण में जो बोला है गुरु के ऊपर ऐसा दृष्टि कुदृष्टि मत करो आनी बात गुरु से त्वम कृत्यो हम कृत्यो निर्जित विप्रान शास्त्रार्थतः स्मशान जायते वृक्ष कंक वृद्ध उपसेवित ऐसा एक श्लोक आता है हा? गुरु से हुंकार करके त्वं कर करके बात मत करो अगर करोगे ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हरा करके बाहबा मानोगे तो वो जो स्मशान में जो वृक्ष होते हैं ना एक वृक्ष होता है स्मशान में उसमें गिद्ध बैठता है कंक बैठता है कंक वृद्ध उपसेवित तो इसीलिए ब्राह्मणों को कभी भी कोई भी ब्राह्मण हो ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में कभी हराने की अपमान करने की लांछित करने की कोशिश नहीं करना ऐसे शास्त्र में लिखा है। तो इसीलिए जो आचार्य है वो शस्त्र विद्या का आचार्य है द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या का गुरु है और ये भीष्माचार्य भीष्म पितामह कौन सा आचार्य है अरे वंश परंपरा के गुरु है ये वंश परंपरा के गुरु आया है ये दोनों को मार करके ही अर्जुन जो है ना राज्य लाभ किया है। तो इसीलिए लोभी गुरु जहां होता है ना वो लोभी गुरु को संहार करने के भगवान कहते कोई दोष नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा अभी देखिए आप लोग बैठे हैं ना आप लोगों को देर हो रहा है क्यों देर हो रहा है लक्ष्मी अभी आए नहीं कब आएगा कब आएगा कब आएगा इसीलिए अभी है अपने बच्चों को समाप्त करते हैं हरिओम तत्सव हरिओम तत्सव।